हैं शिक्षा को, और उसमें भी वंदनीय, किंतु लोगों के संग में पढ़ करके जवानी अवस्था में ऐसे महादुर्दांत दस्यु हो गए थे। नित्यानंद प्रभु जी जाकर के वहां पर जहां घड़े से ढाल करके मद्यपान कर रहे थे, बोले ये क्या करते हो, हरे कृष्ण बोलो, बस ऐसे देखा आंखें लाल लाल निकली थी, हैं इतना मजा जो कोई आ जाए हमारे पास में। नित्यानंद प्रभु पहले से प्रस्तुत थे, एक पैर पीछे भी रखे थे और एक पैर आगे, हरिदास ठाकुर को पता नहीं, किंतु वो भी चैतन्य थे, बस जब उनकी तरफ में देखा और उठाया, चलो बस भागे। उस दिन तो भग गए, वो भी पीछे पीछे दौड़ा, किंतु मद्यप था। एक गली आई, गली में वहां से दो तीन रास्ते थे, एक इधर एक सामने, तो वो लोग बाएं तरफ में नित्यानंद प्रभु जी मुड़ करके चले गए, और ये दोनों और ये आए और देखा नहीं, सीधे ही चले गए, भगवान की इच्छा हो जे बच गए। ये पासी में द्वैताचार्य का घर है और महाप्रभु जी सुभाष जी के भवन में थे। महाप्रभु जी के घर में उधर से आने से पहले अद्वैताचार्य जी का घर पड़ता है, तब श्रीवास का, तब फिर महाप्रभु जी का। तो उन्होंने अच्छा भाई क्यों हाँफ रहे हो, क्या बात है, हरदास को पूछा, वो तो भाग करके महाप्रभु जी के पास में चले गए। हाँफ रहे, आज तो प्राणों पर बीत रही थी, आज तो मारे गए थे, ये बच गए किसी भावत से, पियकड़ के पड़ गए। तुम नित्यानंद के साथ में थे, वो तुमको मरवा देगा, और कुछ दिन में देखना मेरी बात, मैं लिख देता हूं ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लाइन। अभी एक पियक्कड़ वहां पर बैठा है और एक पियक्कड़ वो नित्यानंद को भेज रहा है, वो सब जितने मद्यप हैं मद पीने वाले उस सबको एकत्र करेगा और सभी मिलकर के वहीं पर मदपान करेंगे
और नाचेंगे
और वहीं पर नाचे के कूद देंगे। उन्होंने हंस लिया अद्वैताचार्य जी, प्रभु आप हमको वंचित मत कीजिए, नित्यानंद प्रभु को मैं जानता हूं, उस दोनों का उद्धार हो गया, मैं समझ लिया जब नित्यानंद प्रभु जी ने इच्छा की जरूर होगा। जब वो हंस दिए थे ये भी हंस दिए, अद्वैताचार्य तो जानते ही है। दूसरे पहले दिन तो ये हो गया, दूसरे दिन फिर अब नित्यानंद प्रभु घर ही गए और उसी के पास, अरे हरे कृष्ण बोलो, फिर वही आया लेकर के मधाई मारने के लिए कि जगाई दौड़ा, मधाई दौड़ा मारने के लिए, और वो जगाई उनको पकड़ा, अरे क्यों मारते हो, वो अकिंचन की निष्किंचन वो है, उसका कोई आगे पीछे कोई नहीं, तुम उसको क्यों मार रहे हो, उसके पास में क्या है और किस लिए तुम मारता है, छोड़ दो जाने दो। किंतु तभी जब वो पकड़ लिया, तभी वही पकड़े हुए में ही फड़िया चला करके मारा और इनको लग गया और रक्त प्रवाहित होने लगा। इसके बाद में नित्यानंद प्रभु उनको हरदास ठाकुर जी दौड़ करके महाप्रभु जी को कहा, महाप्रभु जी समस्त लोगों को लेकर के जो सुभाष कीर्तन हो रहा था वहां से आए और आकर के देखा जी सब पूछ में ये मार लिया है। नित्यानंद प्रभु वहीं पर खड़े हैं, अब वो भागे नहीं और उसको पकड़ करके उसको लेकर के वहां पर चला गया। अब इसको भी अनुताप कुछ हो रहा था, क्यों इसमें महाप्रभु आए और चक्र किया, चक्र सचमुच में एकदम आ गया और हाथों में नाचा, अब तो छोड़ने वाले थे नित्यानंद प्रभु देखकर। ऐसा कोई अवतार नहीं, रामचंद्र जी ने धनुष मार दिया, कृष्ण ने भी कभी कभी चक्र का व्यवहार किया या जैसे तैसे मारा, किंतु नित्यानंद प्रभु का जी इस जन्म में इस अवतार में किसी को प्राण से नहीं मारना, ये अवतारे प्रभु प्राणी नहीं काट मारे,
एगो अस्त्र ना धरिलो प्राणी का ना बदिलो, नाम दिया सकल हृदय से दिलो,
नाम प्रेम दे करके उनका हृदय शोधन कर दिया, बस यही अवतार की विशेषता है। बस झट महाप्रभु जी ने उसको क्षमा कर दिया और उसके सिर पर हाथ रखते ही वो कृष्ण कृष्ण कहने लगा। अब वो जगाई कहता है कि इनको तो प्रेम दिया और हमको नहीं दिया। उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु से जाकर के पहले क्षमा मांगो, नित्यानंद प्रभु जी पहले से ही क्षमा किए, क्षमा करते महाप्रभु जी उसको भी प्रेम करते कृतार्थ कर दिया अब वो दोनों नित्यानंद प्रभु के आदेश से उसी घाट को अब साफ सुथरा करते, उस दिन से पीना टीना सब छोड़ दिया और हरिनाम करने लगे, घाट को साफ करते थे, इसलिए जगाई घाट की मधाई घाट उसका नाम हुआ। अब सब लोग सब अच्छी तरह से जीने लगे। अब मायापुर का और नवदीप का स्वरूप ही एकदम बदल गया। एक तो हुआ ये, दूसरा और एक होना। मुसलमानों का निषेध था, विशेष करके हिंदू लोग ही कीर्तन नहीं करने देते थे। जैसे आज भी है ना, कोई मंदिर बनाना चाहता है अयोध्या में तो हिंदू लोग ही उसको बाधा देते हैं, मुसलमान बाधा नहीं दे रहे, वही बाधा देते हैं। तो उसी तरह से उस समय में भी बहुत से जयचंद थे, उन लोगों ने जाकर के मुसलमानों से नालिश कर दिया कि ये हिंदुवानी करता है, जोर जोर से हम लोगों को सोने नहीं देता है, करताल बजाता है और सोने नहीं देता। विशेष करके ये सुभाष पंडित अपने चारों भाइयों को लेकर के मजीरा बजाता है रात भर, और रात भर न जाने क्या वो मदपान करता है न क्या करते हैं और कीर्तन करते रहते हैं। बस उसने आदेश दे दिया, घोषणा कर दी, कल से हमारे राज्य में कोई भी कीर्तन नहीं करेगा उच्च स्वर से, जो कुछ करना है अपने मन ही मन करे, कोई जोर से नहीं करेगा, यदि किया तो मैं घर को उखाड़ करके गंगा में फेंकवा दूंगा और उसे मुसलमान बना दूंगा। सब लोग थर्रा गए, किंतु महाप्रभु जी ने कहा जे चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक दिन सुभाष के घर में घुस करके और उनका खोल भी तोड़ दिया, मृदंग तोड़ दिया, इसलिए उसको अभी भी खोल भंगा कहते हैं, अभी भी तोड़ दिया। इसके बाद में वो जो निषेध करने के लिए गया था उसके दाढ़ी और मोछ में
जल गया,
आग लग गई, और जब वो पहुंचा खबर देने के लिए दौड़ करके, तो हरे कृष्ण मुल्ला जी से कहने लगा। मुल्ला जी कहते भाई क्या हो गया, कैसे ये जल गया, तो हरे कृष्ण, अरे भाई तुम बतलाओ ना ये क्या हुआ, तो हरे कृष्ण, कोई भी उत्तर ना दे। अंत में किसी प्रकार से वो बोला जी भाई मैं गया था वहां पर कीर्तन का मना करने के लिए, ये हमारा ये सब जल गया भी और मुख में ऐसा कृष्ण नाम आ गया, अब छोड़ दिया। इसके बाद में फिर महाप्रभु जी विराट नगर संकीर्तन लेकर के उसके पास में गए और उसे तर्क वितर्क किया और उसको परास्त किया। वो बोला जैसे आज रात में हमने देखा नृसिंह जी हमारी छाती पर चढ़े हुए हैं और नाखून घुसा दिए हैं, देखो अभी दाग है। उन्होंने कहा इससे यदि तुम कीर्तन में बाधा देगा तो तुम्हें हम ध्वंस कर देंगे, खबरदार मत करना, अभी भी ये दाग है। फिर आज से हम लोग कभी भी कीर्तन में बाधा नहीं देंगे। महाप्रभु जी ने कीर्तन में तो बाधा देगा नहीं, ठीक है, गायों को किस लिए काटता है तुम लोग, सभी हिंदुओं को भी दूध देती है गैया माता के रूप में, तुम्हें भी कभी भी वो पक्ष नहीं लेती हैं और तुम ऐसा क्यों करते हैं। तो उसने कहा कि कुरान शरीफ में ऐसा मना किया गया, कुरान शरीफ में ऐसा गाय वध करने के लिए नहीं कहा गया, और किसी के धर्म को जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना, मंदिरों को तोड़ना, ये सब नहीं लिखा। ये तो अपने मनमानी ढंग से ये सब इनकी चित्त वृत्ति खराब है इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे वंश के लोग जो लोग गाय की हत्या करेंगे या संकीर्तन में बाधा देंगे उनको अपने वंश समेत तलाक दे देगा। वही चंद्रकाजी समाज हुए, पीछे से उनके अप्रकट होने पर महाप्रभु जी ने शायद वहीं पर एक गोलोक चंपक का वृक्ष रोपण किया था। 500 वर्ष हो गए हैं, ऊपर में खूब फलता फूलता है, किंतु उसमें कोई भीषण सार अंश नहीं है, केवल छिलके ऊपर में लगे हुए नीचे की तरफ में, और ऐसे कहीं इधर से डाल झुक गई है, कहीं इधर से
बारहमास फूल तक,
और चारों तरफ फूलों से सब समय 12वां महीना वो फूलों से भरा रहता है। इस प्रकार से चंद्रकाजी का भी उद्धार किया और लोगों को हरिनाम करने के लिए ये सब सुविधाएं दी। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की बहुत सी लीलाएं हैं। कल महाप्रभु जी का जो दंड कैसे भंग किया था, उनकी गुरु परंपरा कैसी है, फिर नित्यानंद प्रभु जी वहां पर जाग गए पूरी धाम में महाप्रभु जी के साथ में, किस प्रकार से वो मिले, कैसी कैसी रथ यात्रा में महाप्रभु जी को स्पर्श नहीं करते थे कीर्तन के समय में, जब भावाविष्ट हो जाते थे राधा जी के भाव में आप विभाव, नित्यानंद प्रभु जी उनको स्पर्श नहीं करते थे, और सब जो लीला है कल हम लोग उनका वर्णन करेंगे। आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि था, वो नित्यानंद प्रभु जी सब परिकर हम लोगों पर कृपा करें, हमारे अनर्थों को दूर करके अपने चरणों में और महाप्रभु जी के चरणों में प्रीति दें, यही प्रार्थना करके अपना आप लोग सब कल प्रस्तुत होकर के आए।
तस्मै श्री गुरवे वञ्चातलकृतश्च कृपासिन्धुभ्यैव च ज्ञानं पाणिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम सदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरदिशे हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये आदेविका तु हरकदगदयाद्यवाचा जाते निकटभूरि आशा प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा धर्मिकेतव गणे गणनं विधे अंधश्यामलिं छटा निरभितो मंदीकृतं देवरं जटजंजारूढरोचि संविदधतं पट्टं वरस्य स्त्रिया वृंदारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कंद निवेशित जलभुजं ध्यायेम दामोदरं भक्त्या विहीनापराधलक्षे चित्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्राव्रजन्तमनुतेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया विभाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोपनेतु सर्वभूतविजयं मुनिमान कृष्ण तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना शिखंडमौले जस्याकदारसनिधे विशुभानुजाय तत्केलिकुञ्जभवनं गणमार्जनी
भक्ति चंद्र प्रेम भक्ति चंद्रिका हम लोगों ने पहले बताया तीन चीजें हैं आराधक और आराधना, भगवान भक्त और भक्त। साधन के के बाद में ये छीने चीजों का लोप हो जाएगा और न तो आराध्य रहेगा न आराधक रहेगा न आराधना रहेगी, ऐसा मत समझना। ये नित्य चीज, मैं सेवक रघुपति पति मोरे,
ये भाव जाए जन,
ये कभी भी भूल करके भी नित्य और साधन किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं है। ये कभी साधन किया नहीं, ब्रह्म हो जाता है या नहीं, खूब अच्छी तरह से इस चीज को गांठ लो, नहीं तो भक्ति ही नहीं है। हम लोग पहले ये सब चीजों को बतला चुके हैं। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रमसप सिद्धि गोविंद चढ़ विश्वास हृदय धरी मधमासर्ज परिहरी सदा कर अनन्य भजन। और नहीं तो तुम लोग यदि वक्तृता देना चाहते हैं तो दे दो। तीर्थ यात्रा मनेर भ्रम, तीर्थ में इधर उधर डोलना ये मन का भ्रम है, उसे कुछ विशेष नहीं। तुम लोग जाएगा एक तो तुमसे बलवान कोई साधारण जो आस्तिक नहीं है नास्तिक भी है तो 50 बार दौड़ करके कराएगा, ये काम सहज में ही हो सकता है। तीर्थ में भ्रमण करते 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 अधिक से अधिक मन शुद्धि केवल होगी, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। वो भी यदि कोई साधु मिल गया है, संग मिल गया है साधुओं का, तो नहीं तो गंगा पवित्र करती हैं, यमुना पवित्र करती हैं, तीर्थ पवित्र भी करते हैं, किंतु वैष्णव के संग मात्र से ही वो चीजें होती हैं जिससे से 1,000,000,000 वर्ष तक करो नहीं। इसलिए तीर्थ यात्रा परिश्रम, खूब भीड़ में जाएंगे, तरह तरह की चीजें देखेंगे। यदि साधु संग मिल गया तो ठीक है, और यदि नहीं मिला और ऐसे ही घूम करके चले आए तो विशेष कुछ ला। वो तीर्थ ये नहीं कहेंगे कि तुम कैसे भजन करो, ये नहीं बताएंगे। तीर्थों का तीर्थत्व केवल संत लोग, संतों के संग में ये सब सहज रूप में हो जाएगा। इसलिए केवल मनेर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण, लाखों लोग जाते हैं गया में, लाखों लोग आते हैं वृंदावन, कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी ऐसे साधारण लोग भी जाते हैं, किंतु मन का फेर काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब जाता है वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में जाएंगे थोड़ा सा दर्शन करेंगे, सुकृति कुछ हुई ठीक, किंतु वृंदावन तुमसे ये नहीं बातचीत नहीं करेंगे, अपना स्वरूप भी नहीं देख रहे। यदि संतों की कृपा हो गई तब तो वो कुछ दिखला, अन्यथा नहीं। इसलिए कहते हैं सर्व सिद्धि गोविंद चरण, गोविंद के चरण में, गोविंद के जो भक्त हैं उनके चरणों में ही भक्ति पा। दृढ़ विश्वास हृदय धर, विश्वास के साथ में कृष्ण का भजन करने से ही हमारा हमारे जीवन का सब कुछ करना हो जाएगा या हो गया, बस ऐसा दृढ़ विश्वास। मद मात्सर्य परिहरि, मौत मां सर्ज इत्यादि जितने भी हैं दुर्गुण इन सबको दूर करो, और सबसे अधिक दूर करो यदि जीवन को उन्नत बनाना है, रसमय बनाना है। मैं ही ब्रह्म हूं, शिवो हम है, नारायणो हम, सो हम इत्यादि, ये भाव तो जरूर ठीक है, अवश्य में नहीं तरस में वृंदावन में मथुरा में हम लोग नहीं प्रवेश कर। कृष्ण भक्त संग करी कृष्ण भक्त अंग करी फेरी श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन अर्चन स्मरण ध्यान नौ विधि महाज्ञान यही भक्ति परम कारण। भक्ति का परम कारण भक्ति कैसे होती है? कृष्ण भक्त संग, कृष्ण भक्तों के संग करो, वो जैसा आचरण करता है उनका अनुसरण करने की चेष्टा करो। संग माने अनुसरण, जैसे जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी की जैसा किया, जैसे नारद जी ने दक्ष प्रजापति के लड़कों को संग दिया और संग देकर के उनको भगवत भक्त बना दिया, ऐसे संग। संग माने सम्यक रूप रूपेण अनुगमनम, संग माने उनके साथ में जाकर के खा पी लिया, बैठ लिया, बातचीत दो चार कर लिया, ये संग नहीं, उनके जीवन का अनुसरण करने का नाम। हृदय से ही उनका अनुसरण करने की यदि स्प्रिया हो गई तो ये संग सम्यक रूपे निकल। कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, कैसे भगवत भजन करते हैं, कैसे संसार से उनका व्यवहार है, कैसे परमार्थ में वो विचरण करते हैं, इन सब कैसे भजन करते हैं भूमिका, ये सब उनके उनकी अपने इष्ट देव के प्रति भावना कैसी है, ये है अनुगमन सबसे बड़ा भय। रूप गोस्वामी का संग कर रहे हैं, रूप गोस्वामी गोविंद देव की किस भावना से सेवा करते हैं, इस भावना को, ये संग है। कृष्ण भक्त अंग हरि, और कृष्ण भक्तों का अंग, उनका दर्शन, उनकी सेवा इत्यादि करें, और श्रद्धानित श्रवण कीर्तन, और श्रद्धापूर्वक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सख्यम आत्मनिवेदन, ये नौ भाव। श्रद्धापूर्वक अर्चन स्मरण ध्यान नौ भी नौ भक्ति महाज्ञान, अर्चन श्रवण स्मरण ध्यान इन भी में भी श्रवण कीर्तन और स्मरण तीन प्रधान है। गुरु मुख से वैष्णव के मुख से आत्म तत्व भगवत तत्व जीव तत्व माया तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व का श्रवण और उसी का कीर्तन, बल्कि बतला रहे हैं नाम लीला ज्ञादिनाम श्रुति श्रवण। श्रवण किसको कहते हैं? नाम लीला गुण आदि नाम श्रुति नाम, माने कानों से उसको जब श्रवण करते हैं तो इसका नाम हुआ कोई भी श्रद्धायुक्त। श्रवणेन्द्रियों के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट इत्यादि का श्रवण करने का नाम श्रवण, और कीर्तन श्रद्धापूर्वक सब में श्रद्धा श्रद्धापूर्वक नाम रूप गुण लीला इत्यादि का उच्च स्वर से गायन या उच्च स्वर से उच्चारण करने का नाम कीर्तन। इस जिह्वा से स्पर्श करते हुए भगवान का नाम रूप गुण लीला का जिह्वा से स्पर्श किया और वो कानों में अपना सुनाई देने लगा दूसरों को भी, तो ये केवल मृदंग ताल के द्वारा करताली के द्वारा केवल जो गायन किया जाता है कीर्तन, उसी को कीर्तन नहीं कहते। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया भगवान की श्रीमद् भागवत को, वो कीर्तन में आएगा। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरुवर्गों ने जो कुछ किया कहा उपदेश दिया, अभी हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और स्मरण अर्चन भूत शुद्धि और अंग न्यास इत्यादि पूर्वक उपचारों के द्वारा षोडश उपचार द्वादश उपचार पंच उपचार इत्यादि के द्वारा मंत्रपूत करके अर्पण करने का नाम अर्चन। भूत शुद्धि मैंने क्या, ओम तद विष्णुम परमं पदं सदा पश्यन्ति दिविव
सदा पश्यन्ति सूर्यः दिविव
चक्षुरः ततं योचक अथवा नाहं विप्रो न च नरपतिर् नापि वैश्यो न शूद्रः नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो बाणस्थो यतिर्व क्रुद्धं निखिल परमानन्द पूर्णामृताब्धे गोपीर्भक्तिं पदकमलयो दास ये बुद्ध शुद्ध है। मैं संसार का कोई भी मनुष्य नहीं हूं, मैं विश्व ब्रह्मांड का भी कोई कुछ नहीं हूं, मैं भगवान का नित्य सेवक हूं। गोपीर भर्तु पदकमलयोर दास दासान दास गोपी भर्तु कृष्ण चंद्र उनके दासों का अनुदासों बस यही हमारा संसार का कोई किसी का पति किसी का भाई किसी का बंधु किसी का से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। वो शरीर का शरीर से संबंध है, उससे आत्मा का संबंध नहीं, वही नित्य संबंध है। इसलिए ना हम विप्रो मैं विप्र नहीं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, मैं गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ अथवा संसार का बौद्ध जैन हिंदू फुंदू सब मैं कुछ नहीं, मैं क्या हूं गोपीर भर्तु पदकमलयोर दास मैं गोपीर भर्तु कृष्ण चंद्र के दासों का और इसमें दासियों का दासियों के दासी का दासी ऐसा। ये हुआ भूत शुद्धि। अंगन्यास मैंने क्या, ये हमारा शरीर भगवान का भजन करने के लिए ये मंदिर के स्वरूप है। इसलिए अपने द्वादश अंगों में द्वादश भगवत रूपों का इसमें न्यास किया जाता है। ओम के शिवाय ओम नारायण ओम माधवाय ओम गोविंदाय ऐसे द्वादश अंग। फिर कर्म न्यास होता है दो दो जुड़वे नामों को, ओम दामोदराय नमो ओ गोविंदाय नमो ओ तर्जनेभ्यं इस तरह से अंगन्यास इत्यादि। हम भक्ति राज्य में अंगन्यास और कर्म न्यास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तिलक करने के समय में भी हम लोग द्वादश अंगों में उनकी प्रतिष्ठा करते, कभी भी कुश नहीं धारण करना। भक्ति राज्य में कुश धारण इत्यादि ये स्मार्ट विधियां हैं, इनसे दूर रहना। बस यही हम लोगों के लिए यथेष्ट है कि मैं कृष्ण का दास या दासी हूं, मैं राधा जी की दासी हूं बहुत यथेष्ट, मैं सीताराम का दास हूं, बस यही सब वैष्णव और कुछ नहीं। उपचार सबको उपचार माने जैसे षोडश उपचार है, द्वादश उपचार है, पंच उपचार है, इसमें पंचरात्र के अनुसार शिव विग्रह का अर्चन इस प्रकार से खूब शुद्ध हो करके और भूत शुद्धि करके चित्त शुद्धि करके तब बैठो। इसमें बहुत से अपराध हैं, इनको दूर करना है, दूर करके तब कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम बस आधार है, नाम संकीर्तन, इसमें इन सब की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे वो भाव सेवा में आ जाए, इसलिए कीर्तन प्रधान है। अर्चन इत्यादि में कुछ कष्ट हैं और विघ्न बाधाएं हैं, किंतु साधु को पहली अवस्था में ये अर्चन करना ही चाहिए। इसके बाद में धीरे 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 ये ठाकुर जी की रसोई करना भी अर्चन है, यहाँ पर मंदिर का मार्जन करना भी अर्चन के अंतर्गत है, स्नान इत्यादि सब अर्चन के अंतर्गत है। हरिनाम कोई कर रहा है तो न स्नान करता है ठीक है, नहीं करता है तब ठीक है, बस एकदम समाधि लग गई तो सैकड़ों वर्ष तक तो वो क्या स्नान करेगा। इसलिए नाम गुण आदि भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि में मन को संजोग करने का नाम स्मरण है। किंतु जब विक्षेप युक्त होता है तब स्मरण है। विक्षेप माने क्या?
रुकावट।
भगवान का भजन कर रहे हैं हम, स्मरण कर रहे हैं मन के द्वारा, और उसमें बीच बीच में सब दूसरी दूसरी बातें आ जाती हैं। जब ये सब दूर हो जाएगी तब स्मरण धारणा, धारणा माने अब वो विक्षेप दूर होने लग गया, धीरे धीरे चित्त को एकाग्र करने लगे थोड़ा थोड़ा, किंतु तभी आ जाता। जब थोड़ा सा धारण करने लगो मन को विक्षेपों से दूर रख करके, तब धारणा। और ध्यान क्या हुआ? जब विशेष रूप में चिंतन होने लगे, अब कोई विघ्न बाधा ना आने आए, तब हो गया ध्यान। हे वस्तु की स्फूर्ति होने लगी, तब यह ध्यान हुआ। और अमृत धारा की प्रवाह की तरह तैल धारावत अविच्छिन्न गति से भगवान के नाम रूप गुण लीला और परिकर इत्यादि का जब चिंतन होने लग गया, तो इसको कहते हैं ध्रुवानुस्मृति। और वही ध्रुव में केवल एकमात्र ध्येय वस्तु की स्फूर्ति होने लगी, तो उसको कहते हैं समाधि। समाधि में भी बहुत तरह की समाधियां हैं,
सभी कल्प
और सब तरह। हम लोगों की वैष्णवों की एक सहज समाधि होती है, सहज समाधि बहुत कठिन बहुत सरल। गोपियों की सब समय सहज समाधि लगी रहती थी। शरीर है किंतु शरीर का कोई भी अनुसंधान नहीं, एकदम नहीं। अनुसंधान किसका? ऐसा सहज रूप में चलते फरते फरते वो कृष्ण जैसे बन जाते, कृष्ण के लीलाओं का अनुकरण करने लगती है। लताओं से पूछती हैं, मेरे कृष्ण इधर गए? जिसको देखती उसी से, ये नहीं देखती ये पेड़ है, पौधा है, नदी है, नाला है, गाय है, हिरण है, कुछ ये सब कुछ नहीं। बस पूछती हैं, हमारे कृष्ण इधर गए, हमारे कृष्ण इधर गए। ये सब सहज समाधि की बात। वैष्णव लोगों में भी, जीवित अवस्था में भी, साधन के अंतिम सोपान में भाव अवस्था होने पर उनकी सहज समाधि हो सकती है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनकी सहज समाधि लग जाती थी, आंख खुला हुआ है, बातचीत कर रहे हैं, सहज समाधि है। किसी ने उनको मट्ठा दिया पीने के लिए, पूछा जी भाई मट्ठा कहाँ का ले आए, कहाँ से ले आए? सखी स्थल से। अरे सखी स्थल से लाया, बस दोना को फेंक दिया, मारने दौड़ा। सहज समाधि थी, इस जगत में वो है नहीं, दूसरे जगत में। ये सब ऋषि के गोविंद सेवा ना पूजिबे देवी देवा, यही तो अनन्य भक्ति तथा अपि चेत सुदूराचार भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव माने क्या? पढ़ते हैं हम सब गीता, सब लोग पढ़ते हैं, किंतु अनन्य भाव माने क्या? अनन्य भाव माने ऋषि के गोविंद सेवा। ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश हैं, उनका नाम ही है ऋषिकेश। ऋषिक माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां भी, गो माने तो गोप गोपी, गोधन गोवत्स, वेद बुद्धि मन, ये सब ये उसके अंदर है। किंतु उसका एक अर्थ है गो माने इंद्रिय, इंद्रिय को कहते हैं ऋषि, और ऋषिकों के ईश है ऋषिकेश कृष्णचंद्र। इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाओ, अन्यथा देवी देवताओं की उपासना में जाकर के उनका चित्त उसमें लग जाएगा और ये अलग रह जाएगा। इसलिए इंद्रियों को इंद्रियों के अधिपति की सेवा में लगाना ही हमारा कर्तव्य है। ना कुजिबे देवी देवा, दूसरे दूसरे देवी देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर के रूप में मत पूजो, किंतु देवी देवताओं का अनादर मत करो। प्रभु के वो इस जगत की रक्षा के लिए एक एक आधिकारिक देवता हैं, उनमें कुछ शक्ति भी विशेष है, इसलिए प्रभु का सेवक समझ करके यथायोग्य जो जिनको जितना आदर देना है उतना दो, किंतु उनको कभी भगवान मत समझो। दुर्गा जी को भगवान मत समझो, गणेश जी को भगवान मत समझो, शंकर जी को भगवान मत समझो, ब्रह्मा जी को भगवान मत समझो। उनको क्या समझो, भगवान के ये दास दास हैं, उनकी विभूतियां हैं, उनमें विशेष कुछ भगवान ने शक्तियां दे करके जगत के कल्याण के लिए, जगत के विमुख लोगों को दंड देने के लिए कुछ शक्ति संचरित की है, ऐसा समझ करके करो, और नहीं तो भक्ति से चुप हो जाएंगे। इसलिए ना कुछ भी देवी देवा, स्वतंत्र ईश्वर के रूप में नहीं। अब यहाँ पर गोपेश्वर महादेव वृंदावन में हम लोग पूजन करने तो जाते हैं, गोपेश्वर का करके और हम उनकी पूजा करते हैं, हम रंगेश्वर की भी का भी दर्शन करने जाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। किस लिए? कि राधा कृष्ण के चरणों में हम रखेंगे, आप में शक्ति है, आप समर्थ हैं सब प्रकाश, इसलिए इसी रूप में सब देवता देवी। चैतन्य महाप्रभु जब गए दक्षिण में, सब देवता देवियों के हरे कृष्ण कहते हुए किस जहां पर भी गए बस हाथ उठाया और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यही तो अनन्य भक्ति कथा, अर्थात कृष्ण को की सेवा हम करेंगे और किसी की नहीं, वही हमारे इष्ट हैं और उनकी उपासना जो करेंगे उससे और कोई अभिलाषा न रखेंगे, कोई कामना नहीं, कृष्ण ही प्रसन्न हो, हमको भक्ति बढ़े, बस इसका नाम है अनन्य। यदि दुराचारी भी व्यक्ति है और अनन्य भजन करता है तो उसको धर्मात्मा ही समझ लो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी से धर्मात्मा, इसलिए अनन्य भजन होना चाहिए। अनन्य भजन ही नहीं, अनन्य रूप में भजन तो करते हैं, गणेश दुर्गा रामचंद्र जी कृष्ण का द्वारकाधीश का भी सबकी खिचड़ी मिला दे, यहाँ तक कि अनन्य भजन में जिस समय में हम लोग गोपीनाथ जी का नंद नंदन का भजन करेंगे उस समय में द्वारकाधीश और मथुरेश को भी थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो अनन्य भजन नहीं होगा। कृष्ण एक ही है, दो नहीं, एक ही कृष्ण है, भगवान एक ही है, राम नृसिंह कल्कि बामन जितने भी भक्त किए सब एक ही के अंदर एक ही तत्व, दो तत्व तो है, श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम राम कमलोचन, तथापि हमारे प्रभु कौन है? किसी ने हनुमान जी से कहा दोनों तो एक ही हैं, श्रीनाथ माने नारायण और ये जानकी नाथ माने रामचंद्र, दोनों एक हैं, तो आप एक दोनों में से नारायण का ही भजन करें, हर जी क्या, किंतु वो कहते हैं नहीं, तथापि मम सर्वस्व
राम कमलोचन,
राम ही हमारे सर्वस्व, ये निष्ठा है, इसमें कोई बुराई नहीं। कृष्ण में है, कृष्ण में अनन्य निष्ठा है, और किंतु ये समझना कि राम और कृष्ण अलग नहीं है, केवल रस के और शक्ति के प्रकाश के तारतम्य से भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। एक ही चांद की बहुविध प्रतीतियां हैं इस रूप में, ऐसा अनन्य रूप में भजन करें। जैसे इस लौकिक जगत में हम एक कन्या का दान करते हैं एक लड़के के साथ, एक को दान कर दिया फिर उसी लड़की को उसी समय फिर दूसरे लड़के के साथ में कन्यादान नहीं हो सकता, बस एक ही। ऐसे ही उपासना मार्ग में एक अनन्य भजन होना चाहिए। आज तो उपालंभ विशेष सकली दंभ, जब जिस सभा में जाते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, जहां जाते हैं, बस वैसे हो जाते हैं। ऐसा कन्याकुमारी में गए, कन्याकुमारी का विशाल मंदिर रामेश्वर में, कन्याकुमारी रामेश्वर विशाल मंदिर है। एक आदमी जाएगा बीच में ना, तो चारों तरफ देख करके उसका माथे में चक्कर आ जाएगा, इतना विशाल मंदिर। वैसे मंदिर बनाने में अरबों खरबों लग जाएगा, विशाल मंदिर। वहां पर शिवलिंग कितना बड़ा, इतना ऊंचा है, और उसकी गोलाई कितनी, परिधि विराट परिधि, इतने बड़े शिवलिंग विशाल सब। ये वहां पर तंजौर में विशाल मंदिर 1008 शिवलिंग से विशाल विशाल से। वहां पर गए, अब शिव हम करने लगे, विभूति लगा ली। अब फिर चले गए वहां त्रिचनापल्ली, जहां पर चैतन्य महाप्रभु रंगेश श्रीरंगम चले गए। वहां पर लक्ष्मी नारायण को देखा, सोने की शिव मूर्ति, हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, बस उनकी देख करके फिर वहां पर तिलक कर लिया है और नमो नारायण आय नमो नारायण आय इत्यादि कर। वृंदावन में आ गए, जब देखा बिहारी जी को, गोविंद जी को, गोपीनाथ जी को, परम भक्त। ऐसा नहीं, एक निष्ठा हो कृष्ण में, सबको यथा योग्य सम्मान दो। जब हम तृण गुल्म लता पशु पक्षी को सम्मान दे रहे हैं, तो भगवान की विभूतियों को देने में कोई हर्ज नहीं, किंतु भगवान मत मान लो। जीव कभी भी भगवान नहीं, हम कभी भी भगवान नहीं, किसी भी अवस्था में नहीं हो सकते, इस चीज को ख्याल रखकर देखते लगाए मन। अरे ये सब और जितने भी उपालंब है और साधनाएं हैं, इसको छोड़ अनन्य छोड़ करके, वो उपालंब है। उपालंब मैंने दिखावटी बनावटी, देखे मन मन लागे व्यर्थ, मन में देख करके मुझे दुख होता है। देह वैसे रिपुगण साधक जतेन्द्रियगण केहू कारो बाधा बाध्य नहीं। देखो हमारे अंदर में काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य है, ये हमारे रिपु षड़ रिपु कहलाते हैं। षड़ रिपु हम लोग समझते हैं कि ये हमारा शत्रु है, क्योंकि हमारे सुख साधन में ये बाधा देता है। आज रुपया मिलने वाला था हमें 1000 रुपया, और वो पहले ही चले गए त्रिकम से, वो 1000 रुपया ले लिया। मैं तो वही हूँ, उन्हीं का मेरा नाम ही नारायण महाराज है, तो मैं उनको देने के लिए जाता हूँ, तो मैं खुद ही आ गया, दे दीजिए, ले लिया। पीछे से पता लगा कि उसने मेरा नाम करके रुपया दे। तो ये शत्रु, ये सब शत्रु शत्रु नहीं है, ये माई की चीज ले लिया हमारा, जो हम कहते हैं ये तो माई की चीज है, और ये शरीर भी माई का। शत्रु क्या है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत, वो परमार्थ को लूट लेंगे। ये क्या लूटेगा, ये 1,00,000 रुपया हमारा ले लिया कोई, तो क्या लिया, कोई घर ले लिया, कोई कुछ ले लिया, क्या लिया, कुछ नहीं, वो तो आज ना कल जाने वाला ही है। इसलिए काम क्रोध लोभ मद मोह मत करके इनको दूर करो, तब ये ठीक है।
कैसे जाएंगे,
जाएंगे साधुओं के संग में जाएंगे, जब अनुताप होगा तो जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और अपने यदि हटाने की चेष्टा करेंगे तो दलदल में फंसते हुए और उसमें फंस जाएंगे। और गुरु वैष्णव के ऊपर में छोड़ करके 24 घंटा उनकी सेवा में लगे रहो, हरि गुरु वैष्णव, और निरंतर हरिनाम करते रहे, जो उनको समय ना मिले कि हमारे अंदर में, दिन भर भगवान की सेवा में लगे रहे, क्रोध का कोई कारण हो बस मन ही नहीं आया, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, समय पर आपको प्रसाद मिल गया। कोई भी टंटे कोई चीज रखो ही मत अपना, कैसे बच जाना, निष्किंचन बन जाओ, तुम्हारा कुछ भी न रहे। सुखदेव गोस्वामी का कोई कोई क्या कर लेगा, उनको क्रोध कैसे करा देगा, पैर में पैर फंसा करके उनको गिरा दिया। वो कहेंगे जैसे ये तो अपने कर्म के फल से मैं गिर गया, इसमें तो कोई बात नहीं। कहेंगे जैसे आपको कष्ट हुआ आप हमें क्षमा करें। यहाँ पर एक पंडित जी थे, यहाँ पर बहुत वृद्ध थे, 100 वर्ष की आयु, तो यहाँ पर आते थे, हम लोगों से भागवत इत्यादि पढ़ा जाता था, अनुशीलन होता। तो कहीं चले गए, जाते थे पैदल 100 वर्ष की आयु में, किसी रिक्शे वाले से थोड़ा सा लग गया, गिर पड़े, उठ करके हाथ प्रभु क्षमा कर, मैं देखता नहीं मुझको अब नहीं क्षमा, गलती उसी की थी, उसको उधर से जाने चाहिए और वो इधर में आकर के टक्कर मार दी। उठ करके खड़े उसका पैर छूने दौड़ेंगे, ऐसे क्रोध जाता है, ऐसे क्रोध जाएगा, किंतु है बड़ा मुश्किल, दम हमें ऐसा करने नहीं देता। तो जितने भी ऋतु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, इनको किसी काम में लगाओ। एक आदमी ने कुछ पाने के लिए एक भूख की सिद्धि, मरघट पर जाकर उसने भूख की सिद्धि की, और भूख की सिद्धि हो गई, वो झट एकदम प्रत्यक्ष हो गया। तो ये क्या चाहते हो, तो हमको जो कहे, मैं जो कहूं उस काम को तुम करो, यहां से ये चीज लाना है, ये करना है, ये रुपये लाना है, कुछ लाना है, जो कुछ इसकी इच्छा है। पर ये एक बात है, मैं आज ही बतला देता हूं, हमको सब समय काम देना पड़ेगा, और काम नहीं देगा तो तुम्हें खा जाएंगे, साथ ही साथ खाऊंगा।